హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భగవద్గీత చాప్టర్ 14 వర్స్ నంబర్ 10. ఇస్ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన్ మే ప్రవేశ్ కర్నే సే పెహలే గురు ఆర్ గౌరంగ సే కృపా కి యాచనా కర్తే హువే మంగళాచరణ కరేంగే తాకి హమ్ జో అధ్యయన్ కర్ రహే హై ఉస్కా పూరా పూరా లాభ ప్రాప్త హో సకే జో కి హై కృష్ణ ప్రేమ్ కి ప్రాప్తి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం అజ్ఞాంతిమరందస్య జ్ఞానంజనశలాకయ చక్షురుమిలితం యేన తస్మై శ్రీగురువే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా నాయం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురుః శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగరుణ్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణరఘునాథం వితంతం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణచైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణపాదాం సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతి గోపీశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరంగే శ్రాది వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతదేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యైవ చ పతితనాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార శ్రీవాసుది గౌర భక్తవింద. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. గ్రంథ శ్రీమద్ భగవద్గీత మాత కీ జై హో. చౌథా అధ్యాయ జిస్కా శీర్షక్ హై ప్రకృతి కే తీన్ గుణ గుణ త్రియ విభాగ యోగ. హమే इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के तीन गुणों के विषय में बहुत ही विस्तार से बता रहे हैं और आज भगवान श्लोक नंबर 10 में हमें कह रहे हैं कि प्रकृति में ये जो तीन गुण हैं वो विभिन्न प्रकार से जीव को प्रभावित करते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति हर समय एक ही गुण के अंदर यानी हर समय बस एक ही गुण उसको प्रभावित कर रहा हो. ये तीनों गुण सदैव आगे बढ़ने की चेष्टा करते रहते हैं. ये तीनों गुण हमको प्रभावित करते हैं और तीनों गुण हम सबको प्रभावित करते रहते हैं और हमारी चेतना के अंदर संघर्ष करते रहते हैं. वो गुण आगे निकलने, कभी वो गुण आगे निकलने की चेष्टा करता है, कभी दूसरा गुण आगे निकलने की चेष्टा करता है, कभी किसी गुण का प्रभाव ज्यादा होता है तो कभी किसी गुण का प्रभाव ज्यादा होता है. तो भगवान बहुत ही सुंदर तरीके हमें ये बात समझा रहे हैं श्लोक नंबर 10 में. कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए. भगवान कहते हैं रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वमसि चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। तो यहाँ पर अभिभूय जो शब्द लिखा है ना भगवान ने, रजस तमस चाभिभूय, तो अभिभूय का मतलब होता है पार कर जाता है। कौन पार कर जाता है? पार करके कहाँ जाता है? सत्वम भवति भारत, सत्व का प्रभाव प्राप्त कर लेता है। कैसे? जब वो हरा लेता है। रजस तमस चाभिभूय, जब रजोगुण तमोगुण को अभिभूय मतलब परास्त कर देता है, उसको हरा देता है, उसको पार कर लेता है। कौन? रजोगुण जब तमोगुण को हरा देता है तो सत्वम भवति भारत, फिर सत्वगुण में स्थित हो जाता है। और रजह सत्वम तमश्चैव, और फिर कभी कभी रजोगुण सत्वगुण को हरा कर तमश्चैव तमोगुण में आ जाता है, और तमह सत्वम रज, और कभी कभी तमोगुण सत्वगुण को हरा कर रजोगुण में आ जाता। भगवान ने यहाँ कहा तमह सत्वम रजस तथा, कभी कभी तमोगुण जो है वो खुद आगे बढ़ जाता है, सत्वगुण और रजोगुण दोनों को हरा देता है। तो अनुवाद देखिए, हे भरत पुत्र, कभी कभी सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सत्व तथा तमोगुण को परास्त कर लेता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सत्व तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये गुण जो है वो कंटिन्यू संघर्ष करते रहते हैं आगे चलने, आगे निकलने का। इन तीनों गुणों में किस प्रकार से संघर्ष रहता है? कभी कभी क्या होता है कि सत्वगुण जो है वो रजोगुण और तमोगुण को हरा देता है और सत्वगुण आगे निकल जाता है। कभी कभी रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को हरा के आगे निकल जाता है, तो कभी तमोगुण भी रजोगुण और सत्वगुण को हराकर आगे निकलने का पावर रखता है। मतलब ये कोई भी गुण जो है वो कभी कभी किसी पर और ज्यादा विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। हर कोई गुण की इच्छा होती है कि मैं इसके ऊपर ज्यादा प्रभाव करूं, जीव आत्मा की चेतना के ऊपर। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जब रजोगुण प्रधान होता है तो सत्व तथा तमोगुण परास्त रहते हैं। जब सत्वगुण प्रधान होता है तो रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं। जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा सत्वगुण परास्त हो जाते हैं। यह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। अतएव जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने के इच्छुक हैं, उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर एकदम अंतिम निर्णय दिया है इन गुणों के प्रभाव से बचने का, कि यदि रजोगुण को आप विकसित करोगे तो सत्व और जो तमोगुण है वो हरा के उनको आप रजोगुण को आगे बढ़ा सकते हो। यदि सत्वगुण को बढ़ाना हो तो उसके लिए रजोगुण और तमोगुण को हराना पड़ेगा, परास्त करना पड़ेगा, और यदि तमोगुण को बढ़ाना हो तो फिर रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण को आप मतलब आगे कर सकते हो, उसको विकसित। लेकिन वास्तव में ये गुणों को किस प्रकार से आगे करना है वो नहीं देखना है। यह प्रतियोगिता जो इनकी चलती रहती है, अतएव जो कृष्ण भावनामृत ने वास्तविक उन्नति करने का इच्छुक है, यदि आप वास्तव में चाहते हो कि मैं भगवत भक्ति की ओर बढ़ूं, तो क्या करना है, इन तीनों गुणों को लागना पड़ता है। इन तीनों गुणों के अंदर नहीं फंसना है, परंतु उनको लांघकर आगे बढ़ना है। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलाप में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती है। इन सब की व्याख्या अगले अध्यायों में की जाएगी। तो अब हमें पता कैसे चले कि हम कौन से गुण में हैं? तो वो आपके खाने पीने के, आपके कार्यकलाप में, आपका रहना सहना, हर चीज जो है वो गुणों के कारण प्रभावित होती है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं आगे आगे भगवान हर चीज को क्लियर करेंगे कि कौन से गुण में किस प्रकार से जीव बोलता है, किस प्रकार से खाता है, किस प्रकार से कर्म करता है, किस प्रकार से हर चीज भगवान आगे बताएंगे। लेकिन यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सत्वगुण विकसित कर सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गुण आपस में आगे बढ़ने की प्रतियोगिता करते रहते हैं, आगे बढ़ने के लिए सदैव चेष्टा करते रहते हैं, और आत्मा जो हम स्वयं जो आत्मा है वो देखती रहे कि हाँ आज ये आगे बढ़ गया है इसलिए मुझे नींद आ गई है, आज रजोगुण आगे बढ़ गया है इसलिए मुझे सिर्फ खाने और भोग करने की इच्छा हो रही है, आज तमोगुण आगे बढ़ गया है इसलिए आलस्य हो रहा है, आज सत्वगुण आगे बढ़ रहा है इसलिए ये हो रहा है, ये देखना नहीं है आत्मा का काम। आत्मा को क्रियाशील होना है और अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने हमें इसी के लिए बताया, लेकिन यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा, अब उसको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास में क्या, जो गुरु आदेश है उनका फॉलो करना है, जो शास्त्र आदेश है उनको, भले ही सत्वगुण जो है वो नहीं आ रहा है, भले अभी हमें नींद आ रही है, माला कर रहे हैं तो तमोगुण हम पर बहुत ज्यादा असर कर रहा है, लेकिन फिर भी नहीं, मुझे गुरु महाराज के आदेश का पालन करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, कृष्ण कृपा अवश्य करेंगे। तो फिर ना जो हमारे गुरु महाराज हैं, जो शुद्ध वैष्णव हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करेंगे तो क्या होगा। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सत्वगुण विकसित कर सकता है और इस प्रकार रजो तथा तमोगुण को परास्त कर सकता है। फिर सत्वगुण में क्या होगा, ज्ञान आ जाएगा। और ज्ञान क्या है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा के लिए कार्य करना है। तो रजोगुण और तमोगुण में तो आप आत्मा के लिए कार्य करोगे ही नहीं, एटलीस्ट आपको सत्वगुण विकसित करना होगा। तो फिर क्या होगा, रजोगुण और तमोगुण दोनों परास्त हो जाएंगे। और इस प्रकार से रजोगुण विकसित करके तो तमो तथा सत्वगुण को परास्त कर सकता है, तथा कोई चाहे तो वह तमोगुण को विकसित करके रजोगुण तथा सत्वगुण को परास्त कर सकता है। यद्यपि प्रकृति के ये तीनों गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सत्वगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं आप संकल्प तो करो, आप करने के लिए आगे तो बढ़ो, तो अगर आप चाहोगे, आप ये जो आपकी स्वेच्छा से आप क्या कर सकते हो, रजोगुण और तमोगुण को परास्त करके सत्वगुण में स्थित हो सकते हो, आपको अवश्य ऐसा आशीर्वाद मिल सकता है और वह इसे लांघकर शुद्ध सत्वगुण में स्थित हो सकता है। क्योंकि जब तक आप रजोगुण में और तमोगुण में कार्य करते हो तब तक आप शुद्ध सत्व के विषय में सोच भी नहीं सकते, लेकिन जब आप ज्ञान के प्रकाश में कार्य करोगे तो फिर क्या होगा, आगे बढ़ते बढ़ते आप शुद्ध सत्व में आ सकते हो, जिसे वसुदेव अवस्था कहा जाता है। वासुदेव अवस्था, इसमें क्या होता है, जिसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है, विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं एक शुद्ध सत्व है, तो जब आप सत्व गुण में आते हो तो फिर आपको क्या होता है, ज्ञान आ जाता है। ज्ञान तो आ जाता है किस चीज का, कि ये गलत है, ये सही है, मुझे पुण्य कर्म करने चाहिए, मुझे अपराध नहीं करने चाहिए, ये सब तो होता है। लेकिन उस समय हमें ये ज्ञान नहीं होता है कि मैं सारे कार्य भगवान के लिए करूं। लेकिन जब अब ज्ञान आ गया कि मैं आत्मा हूं और मुझे गलत कार्य नहीं करने चाहिए मुझे, तो फिर अब फिर क्या होगा, और भी उससे भी विकसित करेंगे ना, जब पुण्य एकत्रित हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, और भी पुण्य एकत्रित होने के बाद हमें ऐसा सर्कमटेंसेस मिलेगा, ऐसे शुद्ध भक्तों का संग मिलेगा जो हमें ये सिखाएंगे कि ये सारे गुण बंधन में डालते हैं, इसलिए इस सत्व गुण से भी आगे बढ़ो और विशुद्ध सत्व वासुदेव स्थिति में कार्य करो, यानी हर कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, तो फिर तुम गुणों के चक्कर से बच जाओगे। तो श्री रूपा जी ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर बताया और आगे कहा, विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कौन किस किस गुण में स्थित है। तो हम किसी का भी कोई कार्य देखेंगे तो हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये कौन से गुण में रहकर कार्य करता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुन्दीनतारणम्। आज भगवान इन तीनों गुणों को एक ऐसा बता रहे हैं कि जीवित व्यक्ति की तरह, जैसे जीवित व्यक्ति लोग होते हैं ना, वो कैसे आपस में हमेशा एक दूसरे को हरा कर उसको परास्त करके आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं, तो भगवान भी आज हमें उसी प्रकार से गुणों के विषय में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं रजस तमश्चाभिभूय, रजोगुण तमोगुण को हरा देता है, और सत्वम भवति भारत, मतलब रजस तमस चाभिभूय, रजोगुण और तमोगुण दोनों को हरा देता है और सत्वगुण आगे बढ़ जाता है। यानी कि सत्वगुण कोई व्यक्ति है वो आगे बढ़ रहा है और रजोगुण और तमोगुण को हरा रहा है। फिर आगे भगवान कहते हैं रजह सत्वम तमस चैव, फिर रजोगुण क्या करता है, सत्वगुण और तमोगुण को भी हरा देता है, फिर रजोगुण आगे बढ़ जाता है। फिर भगवान कहते हैं तमः सत्वम रजस तथा, फिर कभी क्या करता है, तमोगुण जो है वो आगे बढ़ता है, दौड़ रहा है और उन दोनों को पीछे करा देता है और खुद आगे बढ़ जाता है। तो अभी भगवान ऐसे बता रहे हैं तो ऐसा लगता है कि गुण जीवित व्यक्ति है, जीवित लग रहे हैं ना। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या ये गुण जीवित व्यक्ति है या निर्जीव है, जीवित है या निर्जीव है। तो जैसे हम देखते हैं कि हम कोई बुरा कार्य करना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर हमें मन कहता है कि करो, ये कार्य करो, इससे आनंद आएगा, तो हम करना नहीं चाह रहे होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कोई हमें बाई फोर्स करा रहता है। तो क्या मन, ये जो मन हमें बोल रहा है ऐसा करो क्योंकि मन के ऊपर रजोगुण आ गया है तो वो हमसे करवा रहा है, तो क्या मन जीवित है? तो वास्तविकता क्या है, यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हैं वो एक गीत है ना, भगवत गीता ये भगवान का गीत है, और गीतों में कई बार काव्यात्मिक पद्धति से चीजें बताई जाती हैं। काव्यात्मिक पद्धति क्या होती है, मतलब हम बोल कुछ और रहे होते हैं परंतु उसका प्रभाव कुछ और होता है। जैसे अगर कभी कोई बहुत मूर्खता का कार्य करता है तो बहुत काम बहुत मूर्खता वाला करता है, लेकिन हम उसको व्यंग करते हुए उसको तंजिया कैसे कहते हैं, वाह तुम्हारी अकल का तो जवाब नहीं, तुम्हारी अकल की तो दाद देनी चाहिए, बहुत बुद्धिमान हो तुम। कह रहे उसको ये है कि तुमने बेवकूफी वाला कार्य किया, मगर उसको क्या बोल रहे हैं, तुम्हारी अकल की तो दाद देनी। तो उसी तरह से एक तरीका है इसमें काव्यात्मिक पद्धति में, जब कोई गीत होते हैं ना उसमें, उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। इसमें ऐसा करते हैं कि जो व्यक्ति या जो वस्तु की बात होती है वो जीवित नहीं होती है, उसको जीवित है इस तरह से बोलते हैं, मतलब ऐसे दिखाया जाता है, ताकि जो कहने का संदेश है वो अच्छे तरीके से समझ में आए। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत दूं कि कहीं पर बहुत तेज बिजली कड़क रही होती है, तूफान आ रहा होता है, वर्षा हो रही होती है, तेज तेज आवाजें आ रही होती हैं, तो फिर हम अगर किसी को बताएं उस समय कविता रूप से अगर बताएं तो हम कहेंगे ऐसा तेज तूफान था, इतनी तेज तेज आवाजें आ रही थी, इतनी तेज बिजली चमक रही थी, ऐसा लग रहा था कि पर्वत क्रोध से चीख रहे हैं। हालांकि पर्वत निर्जीव है, वो चीखते नहीं है, लेकिन बताने की पद्धति ऐसी होती है कि वो अनुभव कर रहा होता है। तो जैसे मन वास्तव में निर्जीव है, लेकिन इसकी बात को जब हम दूसरों को बताते तो कैसे कैसे, मेरा मन ऐसे बोल रहा है, मुझे मेरा मन है ना ऐसे बोल रहा है, मुझे मेरा मन विवश कर रहा है। तो हालांकि मन निर्जीव है, लेकिन फिर भी हम इस तरह बताते हैं ताकि दूसरे पे प्रभाव पड़े। उसी तरह से भगवान भी हमें क्या बता रहे हैं कि जो गुण है वो एक दूसरे से जीतना चाहते हैं, एक दूसरे को हरा कर, कभी ये जीत जाता है, कभी वो जीत जाता है, कभी वो जीत जाता है। तो यहाँ पर कोई पूछ सकता है कि फिर वो गुण क्यों आगे बढ़े, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर सत्व गुण आगे बढ़ जाता है, किसी को वो बहुत अच्छी अच्छी काम करता है, बहुत ज्यादा ज्ञान वाले काम करता है, और कोई के अंदर सिर्फ रजोगुण ही विकसित हो रहा होता है, फिर वो केवल भोग की इच्छा करता है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करता है, वर्क वर्क वर्क, और कोई तो सारा दिन सुस्ती में लगा रहता है। तो कोई लोग के ऊपर कोई गुण आगे क्यों बढ़ जाता है, वजह क्या है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर कोई पर्टिकुलर गुण ही आगे बढ़ता है? तो वास्तव में क्या है, ये गुण क्या है, ये हमारी चेतना में हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार जो छाप लगी हुई है ना वो है। जैसे अगर यहाँ पर पानी गिर जाता है, अगर यहाँ पर हम फर्श पे अगर पानी गिर जाता है और उसके आगे कोई खड्डा है, मतलब ऐसा स्लोप बना हुआ है और थोड़ा खड्डा है, तो क्या होगा, ये पानी जो है वो बराबर उसमें चला जाएगा। मतलब ये जो खड्डा है वो पानी के लिए एक रास्ता बन गया है। वैसे ही हमने जो कार्य किए हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे पूर्व कर्म हैं, उसकी छाप हमारी चेतना में लगी हुई है, और फिर हमारे इस तरह से हमारे विचारों को दिशा मिलती है, सत्वगुण की, रजोगुण की, तमोगुण, और उसी जैसे ही जैसे वो खड्डा होता है तो पानी कैसे उसकी ओर चला जाता है, तो उसी तरह से हमारे विचार, हमारे पूर्व कर्मों की जो छाप होती है उसी के अनुसार हमारा गुण विकसित हो जाता है। जैसे एक शराबी है, अब शराबी जो होता है उसने पहले बहुत शराब पी होती है तो उसको उसका आनंद पता होता है। अभी क्या, जब थोड़े दिनों के बाद उसने किसी तरह से संगति के कारण या फिर शुद्ध भक्तों के संग के कारण या फिर किसी भी प्रकार से वो भक्त बन गया, अभी वो भक्त बन गया है, वो भले भक्त बन गया है, वो जा रहा है किसी क्लास में या फिर सत्संग में, लेकिन शराब को जब शराब की दुकान आती है या शराब की बोतल देखती है तो उसके मन में वो विचार आने लगता है, है ना। कोई भी हमारे अंदर, कोई भी जिसने पहले मांस आहार किया होता है तो वो जब कहीं से उसकी दुर्गंध आ रही होती है तो खुद ब खुद उसको अट्रैक्शन ऐसी लग रही होती है, लेकिन जिसने शराब पिया ही नहीं है, कभी उसको उसका पता ही नहीं है उसका कि क्या है उसके अंदर, तो फिर वो उसको और देखेगा ही नहीं, अगर देखेगा तो भी उसकी और उसका कोई आकर, तो मतलब क्या है कि ये तीन गुण हमारे पूर्व कर्मों की छाप है जो हमारे मन पर है। तो इस तरह बहुत सारी छाप हमारे मन पर होती है अलग अलग, क्योंकि पूरे जीवन में हमने बहुत सारे कार्य किए होते हैं तो अलग अलग छाप होती है हमारे मन पे। लेकिन ये तीन जो गुण है, जैसे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो मुख्य प्रधान छाप है। जैसे इसको मैं कैसे ना बताऊं आपको कि जैसे कंप्यूटर होता है उसमें बहुत सारे हम लोग दृश्य देखते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत सारे पिक्स होते हैं, उसमें विभिन्न कलर होते हैं, बहुत सारे कलर होते हैं, लेकिन अगर हम वास्तविकता जानेंगे तो वास्तव में क्या होता है, कंप्यूटर में मेन सिर्फ तीन कलर होते हैं, है ना, RGB रेड, ग्रीन और ब्लू, या फिर ऐसा कहीं कहीं होता है RYB रेड, येलो और ब्लू। तो ये तीन कलर्स को आपने, इसका जो संगम होता है अलग अलग मात्रा में, तो एक नया रंग बनता है, है ना। जो ये जो मेन तो तीन कलर है तो इनका अलग अलग मात्रा में जब भी हम लोग है ना संगम करते हैं तो एक नया रंग बनता है। तो इसी तरह से हम देखें, अगर हम बोलें कि भाई ये कोई कलर होगा, बोलेंगे कलर वाले को जाके बोलेंगे कि हमें येलो कलर दो, तो वो येलो कलर में आपको पूरा एक बहुत बड़ा शेड कार्ड दिखाएगा, बोलेगा 100 येलो कलर है मेरे पास, कौन सा वाला चाहिए। इवन व्हाइट कलर बोलेंगे तो व्हाइट में भी बहुत सारे कलर्स आपको दिखाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो कलर्स आपस में किस तरह से उनका संगम हुआ है, उसी प्रकार से एक नया रंग उत्पन्न होता है। तो उसी तरह से हम सब की मानसिकता अलग है, क्योंकि गुण का प्रभाव अलग अलग तरह से हम पर प्रभावित, हमें प्रभाव, हमारी चेतना को प्रभावित कर रहा है। तो जो जो गुण जिस जिस क्वांटिटी में हमारी चेतना को प्रभावित कर रहे हैं, उसी क्वांटिटी में हमारी चेतना परिवर्तित होती है। तो इसका मतलब ये है, ये जो गुण है वो हमारे पूर्व कर्मों की छाप है जो हमारी चेतना पे लगी हुई है। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, फिर हम क्या क्यों इस पर बात कर रहे हैं? ये तो पूर्व कर्मों की चेतना ही है, चेतना के ऊपर हमारे पहले से प्रभाव है, तो चेतना उधर ही उधर की ओर जाएगी। जैसे अभी हमने पानी का एक मिसाल दी थी, पानी गिरेगा तो खड्डे की ओर ही जाएगा ना। तो अगर हमारा पहले से चेतना पर रजोगुण का बहुत ज्यादा असर है तो रजोगुण ही कार्य करेगा, और अगर तमोगुण का असर होगा तो तमोगुण ही कार्य करेगा। लेकिन समझने की बात क्या है, श्री प्रभुपाद जी ने जो हमें बहुत ही सुंदर बात बताई वो क्या है, देखो हम जो कार्य कर रहे हैं ना, तो हमारी कार्य करने की वृत्ति केवल गुणों पर डिपेंड नहीं करती है ना? गुणों से अवश्य प्रभावित होते हैं, परंतु केवल गुणों के द्वारा ही हम कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कार्य करने की वृत्ति पांच चीजों से प्रभावित होती है। पांच चीजें ऐसी होती हैं जिसके द्वारा हम नया कार्य करते हैं। एक, सबसे पहले पूर्व जन्म के कर्म, ठीक है, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही हम कोई गुण हम पर आक्रमण करता है या फिर वो स्प्रदा करता है या फिर आगे बढ़ता है। दूसरा क्या है, बचपन के संस्कार, है ना। अभी भले ही आपके ऊपर रजोगुण है, रजोगुण का बहुत ज्यादा प्रभाव है, लेकिन यदि माता पिता ने आपको अच्छी शिक्षा दी है तो फिर क्या होगा, आप डेफिनेटली सत्वगुण में। माता पिता अगर सत्वगुणी हैं, वो आपको बताएंगे कि पहले आपको स्नान करना है, फिर भगवान को प्रणाम करना है, फिर स्कूल जाना है, ये कार्य करना, मतलब जो आपको संस्कार दिए होंगे ना बचपन में, वो आपको प्रेरित कर रहे होते हैं कि नहीं अभी मुझे ये नहीं करना, अभी मुझे ये करना है, ठीक। और तीसरा जो है वो है संघ। जैसे अगर आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार भी आपके पास भक्ति नहीं है, और बचपन में माता पिता के द्वारा भी आपको भक्ति का कोई भी संस्कार नहीं मिला, लेकिन कैसे भी करके आपने किसी भक्त के साथ आपका संग हो गया, किसी भक्त के साथ आपकी मित्रता हो गई, फिर क्या होगा, माता पिता मना करेंगे कि नहीं जाना, माला नहीं करना, शास्त्र नहीं करना, सुनना, भगवद्गीता नहीं पढ़ना, फिर भी क्या, छुप छुप के हम लोग माला करते हैं, है ना, छुप छुप के सत्संग में जाते हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो जो संघ है वो भी हमें प्रभावित करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें भक्त माता पिता के घर पे जन्म मिलता है, माता पिता हमें बहुत अच्छे संस्कार देते हैं कि बेटा पहले सुबह सवेरे उठकर मंगल आरती करनी चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, अपना जप करना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता को श्रवण करना चाहिए। लेकिन आपका संग इतना बुरा हो जाता है, किसी ऐसे आपका मित्र, जो मित्र फ्रेंड सर्कल है वो ऐसा होता है कि उनमें से कोई भी भक्त नहीं होता है, और फिर आप अगर भक्ति करते हो तो भी आपको यही बोलते हैं कि क्या बैकवर्ड तुम ये कार्य कर रही हो, ये बचपन में करने के काम नहीं होते, बुढ़ापे में करने हैं, अभी तुम माला उठा के घूम रही हो पागलों की तरह, छोड़ो ये सब नहीं करो। तो इस तरह की संगति से क्या, उन दोनों को दबा देते हैं हम, बचपन के संस्कारों को भी और जो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें इतना अच्छा जीवन मिला है उसको भी। तो क्या, संघ बहुत प्रभावित करता है। तो हमें जो संघ है उसको देखना चाहिए। अगर हम भक्त भी हैं लेकिन किसी शराबी के साथ हमारी संगति हो जाती है या किसी मांसाहारी के, तो हम अक्सर देखते हैं कि वो अपने भक्ति पद से भी गिर जाता है। लेकिन ये जो तीन है ना, पहले जन्म के कर्म, बचपन के संस्कार और संग, ये सारे शायद हमारे लिए प्रतिकूल हो। प्रतिकूल मतलब हो सकता है ये हमारे लिए खराब हो, है ना, पूर्व जन्म के कर्म भी खराब हो, बचपन में अच्छे संस्कार भी ना मिले, संग भी हमें अच्छा ना मिले। लेकिन जो चौथी चीज है ना, जिसके द्वारा हम कार्य करने की जो वृत्ति होती है वो है स्वेच्छा। स्वेच्छा का मतलब होता है आवर डिजायर, कि हम क्या चाहते हैं। हम मनुष्य हैं, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भगवान ने शास्त्र दिए हैं, भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है, तो उसमें सबसे जो हमारे हित में जो एक चीज भगवान ने दी है ना, वो है स्वेच्छा। मतलब एज यू विश सो यू कैन डू। श्रील प्रभुपाद जी तो यहां तक कहते हैं एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर ओन डिजायर, आपकी अपनी इच्छा पर हर चीज निर्भर करती है। तो ये जो स्वेच्छा से हम भले हमारे पास अच्छे संस्कार ना हो, भले हमारे पास पूर्व जन्म के कर्मों की पूंजी ना हो, भले अच्छा संग ना हो, लेकिन यदि हम स्वेच्छा से इच्छा करते हैं ना कोई अगर शुद्ध कार्य करने की सत्वगुण में आकर, तो फिर इच्छा के बाद क्या होता है, पांचवी चीज है भगवत कृपा। कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें भगवत कृपा की कृपा का होना भी अनिवार्य है। तो भगवत कृपा कब होती है, जो आपकी इच्छा होती है। भगवान की कृपा के बगैर आप कोई कार्य नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ ये बात भी जोड़ देते हैं कि भगवान उसी कार्य को करने में आपके ऊपर कृपा करते हैं जो आपकी इच्छा होती है। भगवान बताते हैं 7.21 में, यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धयाचितुम इच्छति तस्य तस्य अचला श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। अब जिसकी भक्ति करना चाहते हो, मतलब अब जो कार्य करना चाहते हो, भगवान वो कार्य करने में आपकी कंप्लीट सहायता करते हैं। तो भले ही हमारे पास गुणों का प्रभाव जो है वो विपरीत है, लेकिन स्वेच्छा है हमारे पास। हम श्रवण करने जाते हैं, हम कथा श्रवण करते हैं, लेकिन तमोगुण के कारण हमें कुछ समझ में नहीं आता, नींद आ रही होती है। हमें रजोगुण के कारण बहुत सारी वासना हमारे हृदय में जाग रही होती है, लेकिन स्वेच्छा हो नहीं, कृष्ण आप कृपा करो, मैं आपकी भक्ति करना चाहती हूँ, मैं भक्ति में आगे, मैं अपने जीवन को सफल करना चाहती हूँ, मैं ये सब नहीं चाहती, मैं बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना नहीं चाहती, मैं आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ। तो ये जो इच्छा है ना, वो आपको कृष्ण की कृपा प्रदान करती है। एक बात याद रखिए कि हमने पहले क्या किया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम क्या कर सकते हैं। आज जो गुण हम पर विकसित हो रहा है, जो गुण आगे बढ़ रहा है, बाकी गुणों को हरा रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हम केवल देखते ही रह जाएं। वी मे बी प्रोडक्ट फॉर अवर पास्ट बट वी आर नॉट बाउंड फ्रॉम इट। हम पूर्व जन्मों के जो कर्म है उनसे उत्पन्न हुए हैं, परंतु हम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से बाध्य नहीं हैं। हम मतलब अपने पूर्व के बंधन में नहीं हैं। हम स्वेच्छा से यदि कार्य करते हैं तो भगवत कृपा अवश्य प्राप्त होती है और हम अपने गुण को परिवर्तित कर सकते हैं शुद्ध सत्व में। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया कि यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सत्वगुण विकसित कर सकता है और इस प्रकार रजो तथा तमोगुण को परास्त कर सकता है। यानी कि ये हमारी अपनी इच्छा और भगवत कृपा पर डिपेंड करता है। आज हम कहाँ पर हैं, क्यों हैं, इसके विषय में चर्चा नहीं करनी है, वो इतना महत्वपूर्ण है ही नहीं है। क्या कि आज हम यहाँ पर हैं तो हम आगे कैसे बढ़े, तो आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या स्ट्रगल करनी चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, यदि प्रकृति के ये तीन गुण होते हैं किंतु यदि कोई संकल्प ले ले तो उसे सत्वगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है और वह इसे लांघकर शुद्ध सत्व में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं। तो हमारा लक्ष्य है उस वासुदेव अवस्था को पहुंचकर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, और इसके लिए हमें क्या करना है, इच्छा करनी है, श्रवण करना है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, अभ्यास करना है, गुरु आदेशों का पालन करना है, तो भगवान अवश्य हमारे इस शुद्ध प्रयास को देखकर हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हम इन गुणों को लांघ जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। हरे कृष्ण।